नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से भागीदारी आवश्यक है, जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच संस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बिरला ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं मानवता, प्रेम, समानता, सेवा और करुणा का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि ये शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कामना की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं से समाज में शांति, भाईचारा और एकता बढ़े। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और उनका निश्चित कार्यकाल तय करना बेहद जरूरी है। शिमला में एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक कार्यकाल तय नहीं होगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं लाए जा सकते। उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षक छात्र अनुपात देश में बेहतर है और औसतन 10 छात्रों में से एक शिक्षक है, जबकि लाहौल स्पीति यह अनुपात 3:1 है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों और कॉलेजों को समय की जरूरत और रोजगार की मांग के अनुसार तैयार करना होगा।
हम अपने शिक्षा को सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं रख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कई दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने की आवश्यकता। हमने बहुत नियुक्तियां की है और जो आपका पीटीआर रेशियो, इसे प्यूपल टीचर रेशियो कहते हैं, वो हाईएस्ट है पूरी कंट्री में, 1:10। लेकिन कई ऐसे भी जिले हैं आपके लाहौल स्पीति में जहां पर 3 बच्चों के पीछे 1 टीचर है, तो और जो आपकी NEP पॉलिसी बोलती है वो 60 के पीछे 2 टीचर बोलती है, जो मानक भी लगभग यही है। लेकिन मानकों के साथ युक्तिकरण बड़ा महत्वपूर्ण, और निश्चित रूप में पिछले 15 वर्षों में लगभग 4,00,000 बच्चे आपकी सरकारी स्कूलों में कम। मुख्य कारण यही है कि समय के अनुसार हम अपनी सोच को परिवर्तन नहीं ला पा।
राजस्व व जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल किन्नौर जिले के छितकुल में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इनमें 3,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले इको पार्क व 2,12,00,000 रुपए की लागत से रिम सरंग से रानीकंडा तक किए जाने वाले वन्य जीव सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास प्रमुख रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि छितकुल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए भविष्य में राफ्टिंग शुरू करने और उच्च स्तरीय राफ्टिंग प्रतियोगिता करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2019 में आज ही के दिन ये योजना आरंभ हुई थी। ये योजना पात्र भूमिधारक, लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु से नियमित मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसानों की वृद्धावस्था स्थिरता और मानसिक शांति से बीते। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।